السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ایک بات چل رہی تھی کبر کا علاج. کبر کے بہت سارے علاج بتائے، اس میں سے ایک علاج جو انسان خود اگر کرے تو تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بڑائی کا استحضار کرے. دوسرا، انسان اپنی ابتدا کو دیکھے، انتہا کو دیکھے. اور تیسرا علاج ایسا بتایا تھا کہ ایسے کام کرے جو عام طور پر ذلت والے کام ہیں. اس پر قصہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے اندر تھوڑی سی اپنی بڑائی کا احساس ہوا تو فوراً ایسے کام کیے، وہ مشک اٹھا کر کمر پر لادی اور گھروں میں پانی بھر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکڑیوں کا، جب گورنر بنے ہیں، لکڑیوں کا گٹھر سر پر رکھتے بازار میں جاتے اور فرمایا میں امیر المومنین ہوں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ جو طلبہ کے جوتے اٹھائے دے. تو یہ سارے جو تکبر کا، کبر کا علاج بتایا تھا، تو اس پر قصے چل رہے تھے. حضرت مفتی اعظم کی تواضع دیکھیے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطب ابتدا میں رابسند روڈ پر تھا. اسی زمانے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا اسی مطب کے کچھ فاصلے پر مکان تھا. یعنی حضرت مفتی اعظم، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا مکان ڈاکٹر عبد الحی صاحب کے مکان کے قریب میں تھا. حضرت ڈاکٹر صاحب خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مطب میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس ظاہری بیماریوں کے مریض بھی آتے تھے اور باطنی بیماریوں کے مریض بھی آیا کرتے. ڈاکٹر عبد الحی صاحب ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، تو ان کے پاس ظاہری بیماریوں کے مریض بھی آتے تھے، یعنی جسمانی بیماریوں کے مریض بھی اور باطنی بیماریوں کے مریض بھی آتے تھے. تو ٹو ان ون تھے ان کی کلینک، دونوں کا علاج ساتھ میں کرتے. اور ایسی کلینک بہت کم ملتی ہے جس میں ٹو ان ون ہو، اور بعض کلینک تھری ان ون ہوتا ہے جس میں علم بھی ملتا ہے، جسمانی علاج بھی ہوتا ہے اور باطنی علاج بھی ہوتا ہے. تو ہمیشہ ایسی پکڑے. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں دودھ کی پتیلی لیے ہوئے سڑک پر سامنے سے گزر رہے. مفتی اعظم ہیں اور ہاتھ میں دودھ کی سفریا لیے ہوئے، پتیلی لیے ہوئے روڈ پر سے گزر رہے. میں نے سوچا کہ اللہ، یہ مفتی اعظم اور اس طرح سڑک پر، روڈ پر پتیلی ہاتھ میں لیے جا رہا ہے، دودھ کی پتیلی. جو لوگ مطب میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ شخص جو پتیلی ہاتھ میں لیے جا رہا ہے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. آپ نے فرمایا یہ پاکستان کے مفتی اعظم ہیں اور ہاتھ میں پتیلی لیے ہوئے، یعنی سفریا لیے ہوئے، اس طرح جا رہے ہیں جس طرح ایک عام آدمی جا رہا ہے. اللہ، دیکھو انہوں نے بھی ایسے کام کیے، تمام بزرگوں نے. ان کو کوئی وہ آڑ ہی نہیں تھی، کوئی شرم ہی محسوس نہیں تھی. ارے لوگ کیا سمجھیں گے؟ جب اندر کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے. جب اندر سب کچھ بن گیا ہوتا ہے تو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو جو سمجھنا ہو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تواضع کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے ایسا متواضع آدمی کوئی نہیں دیکھا. دیکھا، ایک تو آدمی بتکلف تواضع کرتا ہے، لیکن ان کے یہاں تواضع کے لیے کوئی تکلف نہیں تھا. क्योंकि उनके दिमाग में बात बैठी हुई थी कि मैं तो बिल्कुल बेहकीकत हूं, और अपने बारे में दिमाग के अंदर किसी बड़ाई का तस्वुर कभी आया ही नहीं। इसी वजह से उनको मामूली से मामूली काम करने में कोई तकल्लुफ नहीं होता था। मैंने खुद देखा है कि आप करते के दामन में आप कुर्ते के मैंने खुद देखा है, फरमाते हैं कि आप कुर्ते के दामन में बाजार से आलू खरीद कर ले आते थे। कुर्ते के दामन देखा, अभी तो हमारा कांजो होता है, लेकिन वो जो इंडियन कुर्ता होता है ना, तो उसका दामन थोड़ा ढीला होता है, तो उसके अंदर बाजार में पहले तो थैलियां थी नहीं, तो वो किलो दो किलो जो तोल लेता था, कहा इसमें डाल दो, वो दो तरफ से पकड़ लिया और वो दामन बन गई, और उसमें से लेकर आ जाते थे घर पे। अल्लाह अकबर, अरे समझे वो दामन में कैसा लगता होगा। अल्लाह अकबर, ऐसे थे। जी आलू खरीद कर लाते थे। अब हजरत मदनी रहमतुल्ला, हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्ला अली की मुफ्ती साहब को नसीहत। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्ला अली उन्हीं के जमाने के थे। देवबंद में भी एक दिन इसी तरह दूध लेने के लिए पतेली लेकर जा रहे थे देवबंद के, क्योंकि उनका असल वतन तो वही था, देवबंद के करीब ही था, वहीं पड़े थे। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको देख लिया। अगले दिन इनके बारे में भी पहले बहुत कुछ पढ़ा जा चुका है कि कितने बड़े अल्लाह वाले थे, तो आपको देख लिया। अगले दिन जब आप दारुल उलूम देवबंद में पहुंचे, तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मुफ्ती साहब से फरमाया कि देखो भाई, मौलवी शफी साहब, अल्लाह ताला ने आपको तवाजु का बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया, लेकिन इतनी तवाजु भी न किया करो, इतनी तवाजु भी न किया करो, इसलिए कि अब आप दारुल उलूम के मुफ्ती हो गए हैं, दारुल उलूम के मुफ्ती हो गए हैं, और इस तरह के काम करने से बाज औकात आवाम की निगाह में वक्त कम हो जाती है। देखा कौन कह रहा है, उनके बड़े कह रहे हैं, मौलाना मदनी साहब हुसैन अहमद मदनी, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। फरमाया आप दारुल उलूम के मुफ्ती और इस तरह के काम करने से बाद औकात अवाम की निगाहों में आपकी वक्त कम हो जाती, इसलिए इतनी भी तवाजु नहीं करनी चाहिए। लेकिन वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह ये समझते थे कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, इसलिए मैं क्या एहतमाम करूं कि फुला काम करो फुला काम ना करो। अल्लाह ताला ने तवाजु का ये मकाम अता फरमाया था। अल्लाह अजीब तवाजु थी। आज मार्केट में तवाजु नहीं मिल रही है, किबरत तो बहुत है, तो जो चीज मार्केट में नहीं मिलती है ना, तो वो जब इंसान हासिल करता है तो अल्लाह को बहुत ही पसंद होता है। हाँ, किबर मार्केट में बहुत भरा पड़ा है। तवाजु देखने जाओ तो आप शायद 1000 आदमियों में से दो चार को मिलेंगे ऐसे जो इसमें तवाजु हो, बाकी तुम्हें हर एक में ये मिले। हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कभी कभी नंगे पांव भी चला करो, कभी कभी नंगे पांव भी चला करो, और कभी कभी दूसरों के जूते सीधे कर दिया करो। हाँ, ये भी एक इलाज है, खुद ब खुद कर लो, वो तो शेख की तरफ से, और ये खुद भी कभी कभी कर लिया करो। अरवाह सलासा में हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जब किसी तालिब इल्म को देखते कि इसके अंदर तकब्बुर है और उसके तकब्बुर का इलाज करना है, तो उसको मामूर करते थे, उसको हुक्म करते थे, क्या कि तुम दरसगाह के बाहर तलबा के जूते रोजाना सीधे किया करो। यानी किसी तालिब इल्म को ऐसा देखते तो उसका इलाज वहीं करते, बोले तुम दरसगाह के बाहर तलबा के जूते रोजाना सीधे किया करो, और जब किसी तालिब इल्म को देखते कि उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, तो उसके जूते खुद सीधे फरमा दिया करते। अल्लाह, देखो ऐसे थे, जब कोई तालिब इल्म को सही देखते और अच्छा देखते नेक देखते तो खुद उसके जूते सीधे करते। अल्लाह, क्या क्या मकाम है वाकई, हमारे लिए नमूना है, नमूना। हम सोचते हैं कैसे हो सकता है ये हमसे बड़ों ने किया है। शेख के बताने पर जिल्लत के काम करें। ये जो कहा जाता है ना कि इस रास्ते में बाज औकात जिल्लत के काम करने पड़ते हैं, इस रास्ते में बाज औकात जिल्लत के काम करने पड़ते हैं, वो जिल्लत के काम भी अपनी खुद राय से न करे, अपनी पसंद से न करे। खुद राय से करने से बाज औकात तकब्बुर पैदा हो जाता है और दिमाग और सड़ जाता है और खराब हो जाता है। बल्कि शेख की निगरानी में करे, शेख के हुक्म पर करे, और जितना बताए उतना करे, उससे ज्यादा भी न करे। तो ये है, शेख के बताने पर उनकी निगरानी में करे, जब शेख कहे तो वो काम करे, जब शेख न कहे तो वो काम न करे। ऐसा नहीं कि एक मरतबा शेख ने कह दिया अब वही करते जा रहे हैं। शेख ने जब रोक दिया है तो अब रुक जाओ, तो रुक जाना इसलाह, जब करने को कहा तो करना इसलाह है, और जब कहा अब नहीं करना है तो न करना इसलाह। अब नहीं करने को कहा कि भाई तो तवाजु का काम है, लाओ ज्यादा कर लू, नहीं, यहां अपनी मर्जी नहीं चलेगी, शेख की, डॉक्टर रूहानी डॉक्टर की मर्जी चलेगी। एक साहब ने किसी किताब में पढ़ लिया था कि दूसरों के जूते सीधे करने से तकब्बुर दूर होता है। चुनाचे वो साहब हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आए और दूसरों के जूते सीधे करने शुरू कर दिए। वाली साहब से मुराद हजरत मुफ्ती आजम मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत वाली साहब ने उनको मना किया कि ये काम न करो, फिर मना करने की वजह बताई कि शख्स के हालात ऐसे हैं कि अगर ये जूते सीधे करेगा तो और ज्यादा उसके दिमाग में तकब्बुर पैदा होगा कि मेरे अंदर इतनी तवाजु पैदा हो गई है कि मैं लोगों के जूते सीधे करता हूं। देखो, तवाजु के नाम पर तकब्बुर। वो ये सोचेगा मेरे अंदर इतनी तवाजु आ गई कि मैं लोगों के जूते सीधे करता हूं, तो ये तसव्वुर आ जाना ये भी किब्र है। इसलिए हजरत फरमाते हैं कि इस रास्ते में किसी की निगरानी में चलना पड़ता है, इस रास्ते में किसी की निगरानी में चलना पड़ता है। किब्र और शुक्र का फर्क, फरमाया कि नेमत पर फख्र करना किब्र है, नेमत पर फख्र करना किब्र है, और उसको अताए हक समझना, और यानी अल्लाह ताला की तरफ से समझना और अपनी नाअहली को मुस्तहजर रखना शुक्र है। अल्लाह अकबर। देखो, नेमत पर फख्र करना इबादत। अरे मेरे पास तो हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है लेकिन फख्र हो रहा है, तो फख्र करना ये किब्र है, और उसको अल्लाह की तरफ से समझना और मैं उसका अहल नहीं था, अल्लाह ने मुझे दे दिया है, तो ये शुक्र है। मैं इसका अहल नहीं था, इसका इस्तेजार, और अल्लाह ने मुझे दिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे तो ये शुक्र है, वरना नेमत पर फखर हो जाएगा। जैसे बताए नेमत, माल भी एक नेमत है, सेहत भी नेमत है, खूबसूरती भी नेमत है, आवाज भी नेमत है, बात का अंदाज ये भी एक नेमत है। तो ये नेमत पर इंसान फखर भी कर सकता है, शुक्र भी कर सकता है। तो फखर करेगा तो किब्र है, और शुक्र करेगा तो ये इबादत है। और शुक्र में ये इस्तेजार समझे, ये मेरा कुछ भी नहीं, पहले भी बात गई कि मेरा कुछ नहीं, सब अल्लाह ने दिया है और मैं इसका अहल नहीं हूं। जैसा कि पहले भी अर्ज किया था कि तकब्बुर की बीमारी का बेहतरीन इलाज कसरते शुक्र है, यानी अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करने की आदत डालना। वही बात हजरत इस मलफूज में इरशाद फरमाई कि किसी नेमत के हुसूल पर फखर करना, इसकी वजह से अपने आप को बड़ा समझना, बड़ा समझना और दूसरों को कमतर समझना तकब्बुर है। लेकिन यह समझना कि मैं तो इस नेमत का मुस्तहिक नहीं था, अल्लाह जल्ल शानू ने महज अपने फजल से नेमत अता फरमा दी है, ये इस्तेजार शुक्र है, यही शुक्र किब्र का इलाज है। बाज मरतबा जो स्टूडेंट होते हैं वो जो पहला नंबर लाते हैं तो वो फखर में चले जाते, तकब्बुर में आ जाते हैं, और दूसरों को हकीर समझते हैं। तो एक नेमत मिली, वह पहला नंबर आए, दूसरा नंबर आए, भी एक नेमत है। तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं ये अहल नहीं था, अल्लाह ने मुझे दिया है, तो ये शुक्र होगा, वरना फखर होगा और तकब्बुर होगा, नाशुक्री होगी। उसी को नाशुक्री कहते हैं, क्योंकि शुक्र का अपोजिट नाशुक्री है। तो शुक्र जब नहीं हुआ है तो नाशुक्री जरूर हो गई। अब वो किब्र की शक्ल में हो या और कोई शक्ल में हो, लेकिन शुक्र नहीं हुआ है तो फिर ये नाशुक्री है। और नाशुक्री के बारे में आया है कि लइन शकरतुम लअजीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरी पकड़ आएगी। अब पकड़ भी कई तरह से आती, तो शुक्र करोगे तो नेमत बढ़ेगी, तवाजु आएगी, और अल्लाह ताला तवाजु करने वालों को और नेमत देता है और अकड़ने वाले की नेमत को छीन लेता है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। इसी को तहदी से नेमत कहा जाता है, इसी को तहदी से नेमत कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला की नेमत का जिक्र करना कि अल्लाह ताला ने मुझे नेमत अता फरमाई है। न सिर्फ ये कि चीज तकब्बुर नहीं बल्कि इबादत है, इबादत है जी। यानी तहदी से नेमत, यानी कहना कि अल्लाह ताला ने मुझे नेमत अता फरमाई है, ये चीज तकब्बुर नहीं बल्कि ये इबादत है। और अपनी बड़ाई का जिक्र करके अपनी कोई सिफत बयान करना, ये तकब्बुर है और जबरदस्त गुनाह है। देखो दोनों की शक्ल एक है, शुक्र और फखर में शक्ल एक है, लेकिन एक गुनाह होता है और एक इबादत बनती है। हाँ, बस दिल की नीयत उससे फर्क पड़ेगा। उसमें फखर आया लेकिन दूसरों को हकीर समझा है तो ये किब्र हो गया, और फखर आया लेकिन ये कि अल्लाह की दी हुई है, मैं तो इसका अहल नहीं था, तो ये शुक्र है और ये इबादत है। इसलिए इसको बराबर समझे, अल्लाह हमें समझा दे। बहुत बारीक चीज है, बहुत अजीब चीज है। खाली इसी पर मशक करते जाओ ना तो भी अल्लाह ताला जन्नत में पहुंचा देगा, क्योंकि एक गुनाह से इंसान बच गया ना तो कितनी बड़ी, कितनी सारी इबादतों से भी बेहतर है, नवाफिल की इबादतों से बेहतर। बातिन के ये गुनाह बहुत बारीक है और उनकी सरहदें आपस में एक दूसरे से मिलती है, उनकी बॉर्डर, बातिन के जुना गुना होते हैं उनकी बॉर्डर एक दूसरे से मिली हुई थी। एक हो जाता है गुना तो उसके साथ में दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। एक तरफ तहदी से नेमत है, अगर तहदी से नेमत की गरज से इंसान अपना कोई सिफत बयान कर रहा है, या अल्लाह ताला की किसी नेमत का, उसकी अता का इजहार कर रहा है, तो ये इबादत है कि अल्लाह ने देखो मुझे ये दिया, अल्लाह ने मुझे ये दिया, अल्लाह ने, अब ये इंसान कह रहा है अल्लाह की नेमतों को गिना रहा है कि अल्लाह ने मुझे नेमतें दी, तो ये तो इबादत है। और अगर अपनी बड़ाई के ख्याल से इसका इजहार कर रहा है कि हाँ मेरे पास तो ये भी है, मैं बड़ा भी हूं, मेरे पास माल है, मेरे पास इल्म है, मेरे पास फुला है, मेरे, अगर बड़ाई के ख्याल से इसका इजहार कर रहा है तो ये गुनाह कबीरा है। लो देखा, बारीक फर्क है, बारीक। अब वो दिलों की नीयत को अल्लाह ही जानता है। एक इंसान बोल रहा होता है, दो इंसान है, दोनों अपनी नेमतों का जिक्र कर रहे, लेकिन दिलों की नीयत अल्लाह ही जानता है। जिसकी नीयत अल्लाह की नेमतों को बयान करना है तो वो इबादत में है, और जिसकी नीयत अपनी बढ़ाई बयान करना है तो वो गुनाह में। तो देखा, शक्ल में कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए जाहिर का तो हम कुछ नहीं के आप, जाहिर का तो हमें पता चलता है, बातिन का पता तो अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह दिलों को जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तहदी से नेमत तो वो चीज है कि अल्लाह ताला जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका हुक्म दिया है, वअम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, यानी आप पर आपके रब की जो नेमतें हुई है उनको लोगों के सामने बयान किया करे कि मुझे अल्लाह ताला ने ये नेमत अता फरमाई है। तो तहदीस का जिक्र तो अल्लाह ताला का हुक्म है, तहदीस से नेमत का तो हुक्म है, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि हमने जो नेमत आपको दी है आप उसको बयान कीजिए। इसी तहदी से नेमत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें इरशाद फरमाई। एक मौका पर आपने इरशाद फरमाया, अन सैयदु वुल्द आदम वला फख्र, मैं आदम के बेटों का सरदार हूं। ये अल्लाह ताला की नेमत का इजहार कर रहे। तो हम भी कह सकते हैं, एक आदमी अपनी कम्युनिटी का सरदार है तो तहदी से नेमत के तौर पर तो कह सकता है, लेकिन बड़ाई के तौर पर तो गुना। मैं आदम के बेटों का सरदार हूं, यह तहदी से नेमत है कि अल्लाह ताला ने मुझे मकाम अता फरमाया कि मुझे तमाम आदम के बेटों का सरदार बना। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तहदी से नेमत किब्र की हद में दाखिल हो जाए। इसलिए फौरन अगला जुमला इरशाद फरमाया, वाला फख्र, यानी मैं इस पर किस फख्र का इजहार नहीं करता जिससे दूसरों की तहकीर हो। अब देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने ऊपर होने वाली नेमत का जिक्र फरमा रहे हैं, लेकिन लेकिन डर यह लगा हुआ है कि कहीं हुदूद से मुतजाविज न हो जाए, इसलिए फौरन फरमाया, वाला फख्र, मैं फख्र नहीं करता। फिर तहदी से नेमत की एक अलामत है, वो ये कि तहदी से नेमत के नतीजे में सर और ज्यादा झुकता है। नेमत के इजहार के नतीजे में सर ज्यादा झुकता है, हालांकि बोल रहा है नेमतों को लेकिन और झुक रहा होता है। क्योंकि इस्तेजार होता है कि मैं तो इसका मुस्तहिक नहीं था, मैं तो इस काबिल न था। ये नात आपने सुनी होगी ना, तूने मुझे पहुंचाया, मैं तो इस काबिल न था। काबा के गिर्द घुमाया, मैं तो इस काबिल न था। जमजम पिलाया, मैं तो इस काबिल न था। आप देखो तो उसमें और झुकना होता है। तो अल्लाह ताला के हुजूर मजीद आजीज़े इंकिसारी पैदा होती है। देखा, तहदी से नेमत के नतीजे में सर और ज्यादा झुकता है, और तवाज़ु पैदा होती है, और अल्लाह के हुजूर मजीद आजीज़े और इंकिसारी पैदा होती है। इसलिए कि इंसान ये अल्लाह ताला के सामने इस बात का इकरार करता है कि या अल्लाह, मैं इस नेमत का मुस्तहिक नहीं था और मैं इस नेमत को हासिल करने से आजिज था, लेकिन आपने महज अपने फजल से नेमत अता फरमाया। और अगर दिल के इस्तेजार से और ज्यादा इस्तेजार होगा तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। जी, आंखों से आंसू भी आएंगे। ये रोना नेमत पर है कि आ जाते खुशी के ऊपर कि अल्लाह ने दिया, मैं तो इस काबिल नहीं था। तो देखो ये झुकता है, ये अकड़ता नहीं है। तो ये तहदी से नेमत की अलामत है कि उसमें और झुकेगा, और जो इस तरीके से दूसरा भी बताएगा तो उसमें अकड़ होगा, तो समझो ये तहदी से नेमत नहीं है। शक्ल तो वही है लेकिन अकड़ है, झुक नहीं रहा है, तो फिर ये अकड़ में चला जाएगा। लेकिन अपने महज अपने फजल से नेमत अता फरमाद, इस्तेहजार और इकरार के नतीजे में और ज्यादा आजीजी पैदा होगी। अब देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मक्का से हिजरत करनी पड़ी है, लेकिन अब अल्लाह ताला इनको मक्का में दाखिल कर रहा है और फातिहाना दाखिल कर रहा है। तो अब जाहिर बात है कि जिन्होंने हमें निकाला हो फिर वो हमारे कब्जे में आए तो हमारे अंदर अकड़ पैदा होगी ना कि देखा देखा, तुम लोग मुझे सता दे, आज अल्लाह ताला ने देखो मुझे बड़ा बनाया, तुम सबको मैं पकड़ करूंगा। तो ये देखो, ये फखर हो जाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो जा रहे हैं मक्का के अंदर। अब मक्का के अल्लाह ताला उनको फतह दे रहा है, तो उनके उस वक्त आपकी आजीज़े और इंकिसारी देखो। इससे हमारे लिए इबरत है कि अगर आज हमें कोई सता रहा है कि हम गरीब है, हम आजीज है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमें कोई सता रहा है, कल उठ के अल्लाह ने हमें माल दिया, हमें सरदार बनाया, हम बड़े बन गए, अभी हमारे सामने है, तो हमें उनके साथ में क्या मामला करना चाहिए। आज इंसान उनको तो पकड़ करता है, उनकी तो सबसे पहले काटता है कि हाँ इन्होंने मुझे सताया था ना। तो अगर ऐसा करने जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये अकड़ होगी, और अगर इनको माफ करेंगे तो ये तवाजु होगी। जी, तो इस पर ये इसके अंदर हमें मिलेगा। फतेह मक्का के मौका पर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह बनकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे। और उस शहर में फाते बनकर दाखिल हो रहे हैं जिस शहर के लोगों ने आपकी हिजरत करने पर मजबूर किया, जिस शहर के लोगों ने आपको कत्ल करने के मंसूबे बनाए, जिस शहर के लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, अरे जिस शहर के लोगों ने आपके ऊपर गलाजतें डालने की कोशिश की, नजासत डालने की कोशिश की, जहां के लोगों ने आप पर पत्थर बरसाने की कोशिश की, उस शहर के लोगों पर अब फातह बनकर तशरीफ ला रहे हैं। देखो कितना सताया है, और आज अल्लाह ताला ने इनको ताकत दे दी, सिर्फ 8 साल की मुद्दत के बाद तशरीफ ला रहे हैं। 8 साल के अंदर आपके अलावा कोई शहर में फातह बनकर दाखिल होता तो उसका सीना तना हुआ होता, गर्दन अकड़ी हुई होती, अन्ना वला गैरी के नारे लगा रहा होता कि मैं ही हूं मैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में उस शान से दाखिल हुए कि आपकी गर्दन मुबारक झुकी हुई, आपकी गर्दन मुबारक झुकी हुई है, यहां तक कि सीना मुबारक से आपकी ठुड्डी लग रही है, यानी इतना झुकावे कि ठुड्डी सीने से लग रही है, तो गर्दन झुकी हुई को बता रहे, यहां तक कि सीना मुबारक से आपकी ठुड्डी लग रही है, आंखों से आंसू जारी है, और जबान मुबारक पर कुरान करीम की आयत है, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़म्बिक वमा तअख्खर लियगफिर लक अल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़म्बिक वमा तअख्खर ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما। यह है तहदी से नेमत, क्योंकि इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना की आयात तिलावत करके अल्लाह ताला की इस नेमत का जिक्र फरमा रहे कि अल्लाह आपने फतह मुझे अता फरमाई, और इस नेमत के इस्तेजार के नतीजे में आजीज और इंकसारी पैदा हो रही। यानी फतह कौन दी है? अल्लाह ने दी है, और शिकस्तगी पैदा हो रही और रुजू इल्लाह ज्यादा हो रहा है, ये तहदीस से नेमत की अलामत है। देखो क्या कह रहे, फतह मेरी नहीं है, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ये तहदीस से नेमत जब होगा तो उस वक्त उसके अंदर और झुकाव आएगा, और अगर शक्ल वही है तहदीस से नेमत और उसमें झुकाव नहीं है तो फिर समझ लो तहदी से नेमत नहीं है, बढ़ाई हो रही। और ताल्ली और तकबर की अलामत क्या है कि उससे गर्दन अकड़ती है, सीना तनता है, और इंसान अपने आप को दूसरों से बाला समझता है, और दूसरों को हकीर समझता है, उनके साथ हकारत का मामला करता है, वरना कम अज कम ये तो होता ही है कि वो दिल से अपने आप को दूसरों से बड़ा और अफजल समझता है। अब दोनों के दरमियान हद फासिल कायम करना कि कहां तहदी से नेमत है और कहां तकब्बुर शुरू हो गया, यह हद कायम करना आसान काम नहीं, यह हदूद कायम करना, यह हदूद कायम करना यह आसान काम नहीं। यही वो मकाम है जहां शेख की जरूरत होती है, यही वो मकाम है कि कहां मैं तकब्बुर कर रहा हूं और कहां नेमत बयान कर रहा हूं, तो ये हम नहीं कर सकते। तो फरमाया वहां शेख की जरूरत है, वो शेख ये बताता है कि तुम जो ये नेमत का इजहार कर रहे हो ये तहदी से नेमत नहीं है बल्कि ये तकब्बुर है, बल्कि ये, अब वो इंसान अपनी नेमत का इजहार कर रहा था। और है ऐसे दोस्त हमारे थे कि जो अपनी एक नेमत अल्लाह ने दी है और उसको बताते थे नाम ले लेकर, उससे लोग उनको मानते थे, लेकिन शक्ल तो वही थी लेकिन हकीकत में अंदर कुछ और था। बताया देखो शेख ये बताता है कि जो तुम नेमत का इजहार कर रहे हो ये तहदी से नेमत नहीं है बल्कि ये तकब्बुर है, लेकिन इसका नाम तुमने तहदी से नेमत रख दिया। बिल्कुल वही था, ये तो अल्लाह की दी हुई नेमत ही मैं बता रहा हूं, हालांकि हकीकत में वो तकब्बुर और शैतानी अमल था, तकबुर और शैतानी अमल था जी। अल्लाह अकबर, अजीब चीज है। वरना एक आदमी को अल्लाह ताला ने माल दिया कि अल्लाह कि मेरे पास माल है और ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, इतनी जमीनें हैं, इतने मकानात, इतने वो है, इतने नियमत जिक्र कर रहा है, लेकिन क्यों ये है? अब वो फर्क नहीं समझ पा, कर रहा है। किसी को अल्लाह ताला ने इल्म दिया है तो कहता है मैं तो आलिम हूँ, मैं तो फुला हूँ, मैं तो फुला हूँ, मैं ये किताब पढ़ाता हूँ और मैं फुला दारुल उलूम में पढ़ाता हूँ, सब कुछ है, नेमत है, लेकिन अब इसमें फर्क नहीं कर पा रहा है कि मैं क्यों कह रहा हूं, ये नेमत है। अल्लाह अकबर। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह के एक वाकया है, जिन लोगों को अल्लाह ताला अपने नफ्स की निगरानी की तौफीक अता फरमाते हैं वो कदम कदम पर अपने नफ्स का जायजा लेते रहते हैं। ये बड़ी बड़ी नेमत है वाकईतन, कि जिन लोगों को अल्लाह ताला अपने नफ्स की निगरानी की तौफीक अता, याद रखो आज हम लोगों की तो निगरानी करते हैं, नफ्स की निगरानी नहीं करते। अल्लाह ने हमें अपने नफ्स की निगरानी करने का हुक्म दिया है और दूसरों की निगरानी का हुक्म नहीं दिया है। दूसरों को निगरानी करना यानी तजस्सुस, अरे नफ्स का तजस्सुस करो, जो नफ्स की निगरानी करना, नफ्स का तजस्सुस, वो कदम कदम पर अपने नफ्स का जायजा लेते रहते हैं कि कहीं नफ्स सही रास्ते से ना हट जाए। मैंने अपने शेख हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह से हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया सुना कि एक मरतबा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में वाज फरमा रहे थे, एक मस्जिद में माल दिया है और माल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माल का गलत इस्तेमाल करना ये अलग चीज है। तवाजु वाला भी करता है माल का गलत इस्तेमाल, तकब्बुर वाला भी करता है, अब इस्तेमाल कर रहा है न करना ये दूसरी जहालत है। हाँ वो पूरा पॉइंट ही अलग है, वो तो दोनों किस्म के आदमी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे तकब्बुर की अलामत नहीं है, वो दूसरी चीजें देखी जाएगी। वही तो बोला, वो तो फिर उसके लिए आना पड़ेगा डॉक्टर के पास इनफरादी इनफरादी सवाल, अभी सबके सामने नहीं हो सकता ऑपरेशन। जी आगे चलिए, तो फरमा एक मरतब हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में वाज फरमा रहे थे, वाज फरमा, बड़ा मजमा वाज सुन रहा था और शरह सदर के साथ वाज हो रहा था, यानी बहुत अल्लाह ताला की तरफ से बातें आ रही थी और ऐसी निकल रही थी और पब्लिक भी सुन रही, उलूम और मारिफ के दरिया बह रहे थे। अल्लाह, उसी वाज के दौरान कोई बात हजरत वाला के जहन में आई, वाज करते करते कोई बात जहन में आ गई, आपने फरमाया कि अब मैं आपसे एक बात कहता हूं। लोग अच्छी खासी बात कर रहे थे, उलूम और मारिफ कह रहे थे, लोग तवज्जो के साथ सुन रहे थे, और अचानक बीच में बात के लिए एक बात आपको कहता हूं, मैं तहदी से नेमत के तौर पर कहता हूं कि बात आप मुझसे मुझ ही से सुनेंगे, करते करते किसी और से बात आपको सुनने में नहीं आएगी। आप कह रहे थे, कहते कहते आपने बीच में ये बात कह दी, अभी वो बात कही नहीं थी बल्कि उसी वक्त सर झुकाया और फरमाया अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मैंने ये क्या कह दिया कि बात आप मुझ ही से सुनेंगे, और से क्योंकि ये थोड़े जुमले वो लग रहे हैं ना कि जिसके अंदर अकड़ है, किसी और से ये बात आपको सुनने नहीं आएगी, तो फरमाया ये बात अभी कही नहीं थी उसी वक्त, क्योंकि वो अपने नफ्स की निगरानी रखते थे, कहने का तो निकल गई लेकिन फौरन उन्होंने नफ्स को पहचान लिया, ओहो ये तो बहुत गलत हो, फौरन अस्तगफिरुल्लाह कह दिया। तो जो इंसान अपने नफ्स की निगरानी रखता है तो काम तो हो जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन फौरन उसको पकड़ लेते हैं और वहीं पर तोबा इस्तिगफार कर लेते, ये है नफ्स की निगरानी रखने वाले। उसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता, होते हैं लेकिन पकड़ भी लेते को यहां पर मेरी गलती हो गई, तो ये हुआ अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने ये क्या कह दिया, मैंने उसको तहदी से नेमत का नाम दे दिया, हालांकि ये तो ताली हो गई, बढ़ाई हो गई, और अपनी बढ़ाई का बयान हो गया कि बात आप मुझ ही से सुनेंगे और किसी से नहीं सुनिएगा, मैं इस्तग़फार करता हूं, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, या अल्लाह मुझे माफ फरमा। ये अमल वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में मीटर लगा हुआ हो, मीटर देखा अंदर ही अंदर उन्होंने तोबा कर लिया, माफ कर दिया, अल्लाह मुझे माफ फरमा, तो देखो मीटर लगा हुआ था और वो मीटर ये तोल रहा है कि कौन सा कलमा हद से तजावुज हो गया, बढ़ गया, कौन सा हद के अंदर है, लिहाजा इतने बड़े इंसान बुजुर्ग मुहक्किक ये फरमा रहे हैं कि मैंने तहदीस नेमत का लफ्ज तो इस्तेमाल किया लेकिन हकीकत में तो ये तो तकब्बुर हो गया, तो फिर हम और आप किस शुमार व कितार में हैं? तो फिर हम और आप कहाँ हैं? हम लोग न जाने कितनी मर्तबा तहदीस नेमत के उन्वान से अपने सिफत और अपनी तारीफ बयान करते हैं जबकि हकीकत में वो तकब्बुर में दाखिल होता है। होता है ना बहुत सारे लोग के बोले मैं नेमत का इजहार के लिए बोल रहा हूं भाई, लेकिन वो बोला ना अंदर का फर्क जो है वो हम नहीं समझ पा रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत ही अजीब बातें हैं। अल्लाह हम सबको समझा दे। पता नहीं आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। खैर फिर भी इसका नूर तो दिलों में जरूर उतरेगा, सुनते जाओ। लिहाजा तहदीस नेमत की जो अलामत है उसको पेश नजर रखना चाहिए कि इस तहदीस नेमत के नतीजे में आजिजी पैदा हो रही है या नहीं, खुशू पैदा हो रहा है या नहीं, रुजू इल्लाह में इजाफा हो रहा है या नहीं। अगर ये चीजें पैदा हो रही है तो फिर समझिए कि तहदीस नेमत है, और एक मोमिन की अलामत ही ये है कि उसको जितना जितना नेमतों से नवाजा जाता है वो उतना ही अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज होता चला जाता है, अपनी बेहकीकती उस पर आया होती चली जाती है, खुल जाती है अपनी बेहकी, अपनी आजिजी और अपनी फरोमाईगी यानी अपनी बेबसी और अपनी अब्दियत और अपनी बंदगी का एहसास और बढ़ता चला जाता है। यह है जब नेमत को तहदीस से भी नेमत के तौर पर इंसान बोलता है तो और ज्यादा बढ़ता जाता है, इसलिए कि वो अल्लाह का बंदा है और उसको अपने बंदा होने का एहसास है, इसलिए अल्लाह ताला उसको जिस नेमत से भी नवाजते हैं वो पुकार उठता है या अल्लाह मैं तो इस नेमत के काबिल नहीं था, मैं तो इस नेमत के काबिल नहीं था, आपने अपनी रहमत से अता फरमा दी। लिहाजा जितनी नेमत बढ़ती है रुजू इल्लाह में इतना ही इजाफा होता चला जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके औलाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमत अता फरमाई। मसलन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत अता फरमाई जो तारीख इंसानियत में किसी को भी ऐसी हुकूमत न तो पहले नसीब हुई है और न बाद में नसीब हुई। वो ये कि इंसानों पर हुकूमत, जिन्नात पर, चरिंदों पर, परिंदों पर, फिजाओं पर, हवाओं पर हुकूमत अता फरमा। ये नेमत देने के बाद अल्लाह ताला ने उसे फरमाया इमलु आल दाऊद शुक्रन व कलील मिन इबाद यशकूर, ये आले दाऊद शुक्र का अमल इख्तियार करो और मेरे बंदों में बहुत कम लोग शुक्र गुजार है। रिवायत में आता है हजरत दाऊद इस्लाम ने यह तय कर रखा था कि 24 घंटे में कोई लम्हा ऐसा न गुजरे जिसमें हमारे घर में कोई शख्स भी अल्लाह का जिक्र या शुक्र न कर रहा हो। चुनाचे अपने औकात को तमाम घर वालों पर तकसीम कर दिया था कि इस वक्त से लेकर इस वक्त तक फुला जिक्र में लगा रहेगा, इस वक्त से इस वक्त तक फुला साहब जिक्र करेंगे। देखिए जिस तरह नेमतों से नवाजा जा रहा है तो इसी तरह रुजू इल्लाह में इजाफा हो रहा है, और ये दुआ फरमा रहे रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाह व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिकस सालिहीन, ए मेरे रब मुझको उस पर हमेशगी दीजिए कि मैं आपको इन नेमतों पर शुक्र क्या करूं जो आपने मुझको और मेरे माँ बाप को अता फरमाई है, और मैं नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हो और मुझको अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल रखें। लिहाजा एक मोमिन की खासियत यह है कि जू जू उसको नेमतों से नवाजा जाएगा उसके अंदर आजिजी इनकी सारी पैदा होगी, तवाजु पैदा होगी, अल्लाह ताला की तरफ रुजू में इजाफा होगा। और दूसरी तरफ शरीर आदमी की खासियत यह है उसको जितनी ज्यादा नेमतें मिलेगी उतनी ही उसकी रऊनत में इजाफा होगा, बड़ाई में इजाफा होगा, उसकी फुरौनियत में बढ़ेगा, वो लोगों को और ज्यादा शर पहुंचाएगा। मुतनबी शायर भी कभी कभार बड़ी हकीमाना बातें कह देता है, चुनाचे वो कहता है इजा अंत अक्रम तल करीम मलकतहु व इन अंत अक्रम तल लईम तमर्रदा, यानी अगर तुम एक शरीफ आदमी की इज्जत करोगे उसके साथ अच्छा मामला करोगे तो तुम उसके मालिक बन जाओगे, वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, इसलिए कि शरीफ आदमी तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा। उसके नतीजे में वो तुम्हारा गुलाम और तुम उसके मालिक बन जाओगे। और अगर तुम कमीने आदमी का इकराम करोगे, बिगड़े हुए आदमी का इकराम करोगे, तो चूंकि वो कमीना आदमी था, वो इकराम के काबिल नहीं था, मगर तुमने इसकी इज्जत करके उसको सर पर चढ़ा दिया, तो उसके नतीजे में वो सरकश बन जाएगा। इसलिए लोगों को देखकर इकराम किया करो कि कौन है इकराम के काबिल, वरना हर एक को ही आप बड़ा बड़ा बनाओगे तो वैसे ही बड़ा बन जाएगा जी, तो उसके नतीजे में वो सरकश बन जाएगा। यही मामला हर इंसान का है कि अगर किसी इंसान को नेमतें मिलती जाए और उसके नतीजे में उसका सर अल्लाह के सामने झुकता चला जाए, तो इस बात की अलामत है कि बंदा शुक्रगुजार है। और अब अगर वो नेमत का इजहार करते हुए कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फला नेमत हासिल है, और ये बात वो डरते डरते कहता है कि कहीं तकब्बुर और तअल्ली न हो जाए, तो मालूम हुआ कि तहदी से नेमत के तौर पर ये बात कह रहा है। और अगर नेमत मिलने के बाद वो मुंह उठाकर अपनी बड़ाई बयान कर रहा है कि मैंने ऐसा हूं, मैं ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तो सूरत में वो चाहे तहदी से नेमत के अल्फाज इस्तेमाल करे, लेकिन हकीकत में वो तहदी से नेमत नहीं बल्कि वो तकब्बुर है। ये तो हदीस तहदी से नेमत की अलामत है, लेकिन इंसान खुद से इस अलामत को अपने ऊपर मुंतबिक नहीं कर सकता, इसलिए शेख की जरूरत होती है। लिहाजा जब किसी नेमत का इजहार करे तो अपने शेख से पूछे कि फुला मौका पर मैंने फुला नेमत का इजहार किया था, आया यह हुदूद से मुतजाविज हुआ या नहीं। वो शेख बताएगा कि इस हद तक ठीक है और इस हद के बाद गलत है। और जब 15-20 मरतबा शेख को बताया और शेख ने उसकी इसलाह कर दी, तो उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता खुद जहन के अंदर एक उसका बैलेंस कायम हो जाएगा। फिर इंसान को खुद उस बात का इदराक होने लगेगा कि कहाँ मेरा कदम सही है और कहाँ तकब्बुर है, कहाँ तहदी से नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुराकबा कर ले, आंखों को बंद कर ले, गर्दन को झुका ले और ये तस्वुर करे कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से जुल्मत सियाही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।